हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्या में आप सबका स्वागत है। जब बलराम जी का जन्मदिन था तो यशोदा तो रोड़ी मैया ने और यशोदा मैया ने कहा कि आज आप गाय चराने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आपका अभ्यंग स्नान होगा और आज आपके हाथों से ब्राह्मणों को गऊ दान दिया जाएगा और जो भी ब्राह्मण मांगेंगे वो सब आपको देंगे, आप देंगे उनको और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो वैदिक संस्कृति में जन्मदिन का महत्व होता है कि वैदिक संस्कृति में जन्मदिन के दिन संतों से आशीर्वाद लेते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको सेवा करके दान देकर प्रसन्न करते हैं। और कृष्ण बलराम ने भी यही आदर्श अपने चरित्र में संपन्न किया है। कृष्ण भानु महाराज ने भी जब राधा रानी का जन्म हुआ था यही आदर्श स्थापन किया था। और आज के ज़माने में हमारे पास तो गाय ही नहीं है तो हम क्या दान करेंगे, हा? हमारी बेटी ने कहा था कि हम गाय रखेंगे पुराने घर में, जहाँ कार पार्किंग होता है हम गाय पार्क करेंगे। इच्छा भी अच्छी है, बहुत प्रामाणिक इच्छा है। अभी समय ऐसा आ गया है कि दान देने के लिए भी कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में बटर योगर्ट मतलब दही और मक्खन जो है फेंका करते थे प्रेम से, उत्सव में हल्दी और सुगंधित द्रव्य मिलाया हुआ जो मक्खन और दही था वो प्रेम से अतिथियों के ऊपर फेंका करते थे। आज अगर समझो डॉक्टर ज्योति ने हमारे ऊपर मक्खन फेंका तो हम लोग ऐसे कपड़ा जरा नहीं कपड़ा खराब हो गया ऐसे देखेंगे, हाँ। लेकिन वैभव का लक्षण है, प्रेम का भी लक्षण है। तो सबसे पहले आज हम डॉक्टर जुगल को बधाई देते हैं जन्मदिन की, क्योंकि आज हमारे पास अगर गाय नहीं है, स्वर्ण नहीं है लोगों पर क्या कहते हैं उसको उधड़ने के लिए, क्या मैडम हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, उछालने के लिए, हाँ, तो भक्तों को घर में बुलाकर सत्संग कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। आमतौर पर भौतिक दुनिया में जब कोई बर्थडे होता है तो जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल होती है सारा अटेंशन उसके ऊपर रहता है और वो प्लानिंग भी ऐसा करते हैं कि द हाईलाइट ऑफ द इवेंट इज द बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल। लेकिन कृष्ण भावना संस्कृति में जो जन्मदिन होता है तो सभी लोगों का जो लक्ष्य जो ध्यान है वो भगवान पर रहता है, भगवान के गुणगान पर रहता है, भगवान की सेवा पर रहता है। इस तरह से अगर हम उत्सव मनाएंगे तो हमारा जन्मदिन भी सफल है, क्योंकि वैसे हमारा जन्मदिन जो है इस भौतिक दुनिया में जो हम इतने आनंद से मनाते हैं, है ना, इतना वेट करते हैं उसको और वो ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन बहुत दुख करते हैं कि अभी 365 दिन के बाद में आएगा। तो सारा ध्यान जो है अपने ऊपर रहता है। लेकिन भक्त लोग सोचते कैसा है कि जन्मदिन जो है ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट डे है जिस दिन हमें भौतिक दुनिया में प्रवेश करना पड़ा, इस शरीर को धारण करना पड़ा। दिस इज हाउ द डिवोटीज थिंक। आप बोलेंगे अरे इतना अच्छा बर्थडे है तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, अगर हमें सत्य को समझना है कि जीवन में सत्य क्या है तो सत्य हमेशा अच्छा लगेगा ऐसा नहीं होता ना, सत्य कई बार कड़वा भी होता है लेकिन अंतिमतः सत्य जो है वो अमृत के समान मधुर होता है। अगर हम उसको समझ पाएंगे, जैसे बीमार आदमी को दवा कड़वी लगती है और कभी कभी पीलिया होने वाले व्यक्ति को गन्ना भी कड़वा लगता है, लेकिन जो ठीक हो जाएगा तो गन्ना जैसा है वैसा लगेगा ना, गन्ना तो वैसे मिठाई है लेकिन व्यक्ति बीमार है इसलिए वो मीठा गन्ना भी उसको कड़वा लग रहा है। उसी तरह से परम सत्य जो है उसके बारे में हम समझेंगे तो बहुत कड़वा लगेगा हमको, नहीं आप शरीर नहीं है महात्मा है और हम लोग जन्म मृत्यु के जरा व्याधि में फंसे हुए हैं चक्र में और बड़ा दुख भरा जीवन है यहाँ का, और जब हम भगवान के पास जाएंगे तो जीवन का आनंद प्राप्त होगा, बहुत कठिन लगेगा हमको समझने में। लेकिन एक क्षण में अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को पाने का प्रयास करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जन्मदिन वो दिन है जिस दिन हम शरीर धारण करके माता के गर्भ से इस जन्म मृत्यु भरे हुए दुनिया में प्रवेश करते हैं। जीवन काल में बुढ़ापा और रोग, इसका कष्ट भोगने के लिए, इसका क्लेश भोगने के लिए, अंत में सबसे भयंकर क्लेश तो मृत्यु का। इसलिए जन्म के दिन के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इतने साल बीत गए, जीवन का उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त किया, कितना परसेंट जीवन के उद्देश्य के पास में आए, और एक और साल हमारे जीवन अभी मृत्यु की ओर जाएगा, एक और साल बीत गया, हम और अधिक मृत्यु के पास में आए। हर सूर्यास्त को सोचते हैं एक और दिन हम मृत्यु के पास में आए, हर जन्मदिन पे सोचना चाहिए कि एक और साल हम मृत्यु के पास में आए। इज इट नॉट ट्रू? इट्स अ फैक्ट। तो ये चिंतन करने का दिन है। तो ये चिंतन करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करना बहुत अनुकूल होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन का 100 साल की आयु हो, 50 साल की हो, या 20 साल की हो, या 150 साल की हो, सब सुनना बुनना सब बंद, दिखना बंद, सुनना बंद, बोल भी सकते नहीं, चल नहीं सकते हैं, फिर भी 111 साल फोटो आ रहा है पेपर में। सोचने जैसी बात है कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का। लेकिन भगवान का जब गुणगान होता है तो हर उत्सव, हर प्रसंग जो है पवित्र हो जाता है। एवरी ओकेजन इज ऑस्पिशियस व्हेन श्री कृष्णा वी रिमेंबर श्री कृष्णा। गुरु महाराज कहते हैं कि अब सब बहुत पवित्र अगर घटना है, बहुत घटना पवित्र है, कोई शादी है किसी की, या और कोई उत्सव है, या कोई किसी को गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है, या कोई किसी का बहुत बड़ा उत्सव है जीवन का, अगर ऐसे उत्सव में भगवान की स्मृति नष्ट हो जाती है तो वो सबसे बड़ा अशुभ घटना है। और अगर बहुत अशुभ घटना घटती है, किसी की मृत्यु होती है, कोई ऐसा अपशकुन होता है, कुछ चीज़ का नुकसान हो जाता है और हमें भगवान की याद आती है उसकी वजह से, तो सबसे बड़ी शुभ घटना है वो। तो शुभ और अशुभ की व्याख्या क्या है? जिस घटना में भगवान की स्मृति है वो घटना शुभ है, इट इज ऑस्पिशियस। इफ यू रिमेंबर द लॉर्ड देन दैट थिंग इज ऑस्पिशियस, हवेवर मटीरियली इट इज अनऑस्पिशियस। एंड वी फॉरगेट द लॉर्ड, हवेवर ऑस्पिशियस मटीरियली वन थिंग इज, इट इज अनऑस्पिशियस। ये हमें समझ में आया तो हमारा जीवन धन्य है, फिर हम घटना को, हर घटना को जीवन में उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। और ये सीखने के लिए जिंदगी है, क्योंकि तो कुत्ता बिल्ली की जिंदगी में तो हम ये सीख नहीं सकते ना कि क्या अशुभ है, क्या शुभ है, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, क्या भगवान की सेवा में है, क्या माया की सेवा में है, ये कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकते, वो केवल इंद्रिय भोग के जीवन में लिप्त हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि क्या भौतिक है, सद असद विवेक बुद्धि क्या है, सार असार विवेक बुद्धि क्या है, इसको हम केवल मनुष्य के जीवन में समझ सकते हैं। और अगर वो समझने के मार्ग में भी हम लोग हैं तो भी हम यशस्वी हैं, तो भी हम धन्य हैं, जीवन के आनंद का उगम उसमें है। अगर भगवान के चरणों में रति नहीं है तो वो जीवन जो है वो शव समान है, इट इज लाइक अ डेड बॉडी, जीवत शव समान। तो हमें जीवन को जीवन की तरह जीना चाहिए कि जिस जीवन में भगवान की रति है, भगवान का प्रेम है, उसी को जीवन कह सकते हैं। बाकी सब जीवन जो है वो मुर्दे घूम रहे हैं दुनिया में, उस शरीर को भोग देने के लिए भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ हर जगह पर कोशिश कर रहे हैं कैसे उनको तृप्त किया जाए। इसलिए कौन सी भी घड़ी हो, यहाँ तक कि किसी का स्मृति दिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो, या किसी की शादी की सालगिरह हो, किसी का जन्मदिन हो, या और किसी भी दिन का कुछ भी अवसर हो, जिस दिन में भगवान को हम याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वो जीवन पवित्र है, वो दिन पवित्र है, वो घटना पवित्र है, वो प्रसंग पवित्र है। इसलिए भक्त लोगों का हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर दिन, हर महीना, हर पक्ष, हर साल सब पवित्र होता है, क्योंकि वो हर दिन सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं और नियमित रूप से भगवान के सत्संग में बैठते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। भगवान की जो कथा है, सबसे पहले भगवान के नाम के बारे में बताएंगे। ये जो हम लोग बार बार हम कह रहे थे कि पुकारो, हृदय से पुकारो, भगवान के नाम के कीर्तन में संकोच मत करो, इसका कारण क्या है कि जब दुनिया में कोई झगड़ा होता है, कोई वाद विवाद होता है, मैं कैसे सत्य हूँ और मैं कैसे बढ़िया आदमी हूँ उसको समझाने के लिए इतने ज़ोर से बोलते हैं हम लोग। हाँ, ट्रेन में किसको बोलना पड़ता है क्या, धीरे बोलो? ट्रेन में सब लोग ज़ोर से बोलते हैं। हाँ, कॉरिडोर में, हॉस्पिटल के लॉबी में, मार्केट में, सब लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन होता है, सबका वॉल्यूम डाउन हो जाता है, क्योंकि जिस विषय में रुचि है वहाँ पर आवाज़ ज़ोरदार रहता है। शेयर मार्केट में जाइए और बोलिए प्लीज कीप साइलेंस, इम्पॉसिबल। क्योंकि सद्भाग्य का लक्षण यह है कि हम लोग हृदय से भगवान का नाम पुकारते हैं। ये कंठ जो है ना, ये कंठ, ये जो प्राण वायु जिसके वजह से कंठ चलता है, ये भगवान की हमारे लिए बहुत बड़ी भेंट है, क्योंकि इसके द्वारा हम उनको पुकार सकते हैं। और अगर पुकार में हमारा कशिश नहीं है, हृदय की क्या कहते हैं उसको, तीव्र वेदना नहीं है, तीव्र पुकार नहीं है उसके अंदर, आक्रोश नहीं है, तो क्यों देखेंगे हमारी ओर मुड़कर वो? हम लोग क्यों कीर्तन करते हैं? क्योंकि हम उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वी वॉन्ट हिम टू नोटिस अस, कि हमें वो देखें कि हम भी हैं, पुकार रहे हैं उनको हृदय से। अगर वो पुकार में आर्तता नहीं है, आर्त भाव नहीं है, तो वो मन नहीं मुड़ के देखेंगे। जरूरत नहीं है तो क्यों देखेंगे मुड़ के? अगर आप ऐसे पुकार रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के भाग के आना पड़ेगा उनको, तो वो जरूर आएंगे। द्रौपदी ने जब असहाय होकर पुकारा, तत्क्षण पैदा हो गए, वो तत्क्षण प्रकट हो गए। जंगल में दुर्वासा मुनि आए, हृदय से पुकारा, आर्त होकर, असहाय होकर, तो रुक्मिणी का 56 भोग भोग ले रहे थे, उसको छोड़ के तत्क्षण जंगल में प्रकट हो गए, आधे भूखे, खाना छोड़ के, क्योंकि वो पुकार ही ऐसी थी। हमको सबको पूछना चाहिए कि हमारी वो पुकार में वो कशिश, वो आर्त भावना है क्या? वो सुनने के लिए बैठे हैं और आपकी पुकार को प्रतिसाद देने के लिए भी बैठे हैं, लेकिन हमारे पुकार में अगर वो जोर नहीं है तो वो नहीं आएंगे, नहीं प्रतिसाद देंगे वो। हम समझते हैं हम डॉक्टर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घर के हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, तो हम कैसे पुकारेंगे? कुंती देवी कहती हैं कि अच्छा जन्म हो किसी का, बहुत धन संपत्ति हो, बहुत विद्या हो, बहुत सुंदर शरीर हो, बहुत बड़ी पोजीशन हो, ऐसा व्यक्ति कुंती देवी कहती हैं कि भगवान को हृदय से पुकार नहीं सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से उसके मन में गर्व उत्पन्न होता है और उसके वजह से वो भगवान को नहीं पुकार सकते। फीलिंगली मतलब भाव से नहीं पुकार सकते वो। ऐसा ही थोड़ा सा बनाएंगे ड्रामा, हृदय से पुकार नहीं आ सकती उनकी, क्योंकि वो ऐसी वस्तुएं जीवन में अहंकार उत्पन्न करती हैं। तमाम अकिंचन गोचर, वो कहते हैं कि इन चीज़ों से जो लोग व्यक्त मुक्त हो गए, मतलब उनको अपने ना जन्म पर गर्व है, ना विद्या पर गर्व है, ना धन पर गर्व है, ना पोजीशन पर गर्व है, तो हृदय से अकिंचन है, मतलब धनवान है बाहर से लेकिन हृदय से नम्र है। वो कहती है कि आप उन्हीं के हो जो अकिंचन गोचर हैं, जो ना किसी चीज पर गर्व करते हैं, ना धन पर, ना विद्या पर, ना जन्म पर, उसके आप हो भगवान, ऐसे कुंती देवी बोल रही है। तो हमें सब कुछ होने पर भी हृदय से दीन होना चाहिए और उनको पुकारने के लिए सीखना चाहिए, हाउ टू कॉल हिम बिना अहंकार के। इसलिए हम आपको सबको विनती करते हैं, एंड में भी हम लोग कीर्तन करेंगे दोबारा, सब कुछ भूलकर कीर्तन करना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं इतना बड़ा पद पे हूँ, मेरा इतना इन्फ्लुएंस है और मैं इतना अच्छा बोलने वाला हूँ, इतना अच्छा चलने वाला हूँ, करने वाला हूँ, मेरा सब जगह नाम है, ये सब कुछ जो हमारी झूठी उपाधियाँ हैं सबको छोड़ देना चाहिए और मैं केवल भगवान का अंश हूँ ये सोचकर उनको पुकारना चाहिए, तो फिर आत्मा के स्तर पर संतुष्टि प्राप्त होती है। मैं जब वर्णन पढ़ रहा था उसमें एक वर्णन आता है तुष्टि देवी, एक तुष्टि देवी भी हैं जो भगवान की सेवा करती है। तुष्टि देवी का मतलब क्या है, संतुष्ट करने की शक्ति जिसमें है वो देवी है। तो अगर हम सब कुछ भूलकर अगर भगवान को पुकारने में सफल रहे तो तुष्टि देवी हमेशा हमको संतुष्ट करती रहेगी, हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर, सही स्तर पर, सत्य के स्तर पर हम सब प्रसन्न रहेंगे हमेशा के लिए, दुख में हो या सुख में रहेंगे भी आत्मा के स्तर पर प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए आप सबको हम विनती करते हैं कि हृदय से भगवान को ग्रहण कीजिए। बाकी सब में तो हम कंजूस हैं ही, देने में, किसी को कुछ करने में, किसी को थैंक यू बोलने में, किसी की सराहना करने में, है ना, तो अप्रिशिएट समबड़ी, तो ग्लोरीफाई समबड़ी, शब्द ही निकलते नहीं है बाहर, है ना। किसी की टीका करनी है, निंदा करनी है, तो कितने वोकेबलरी, जो शब्दकोश बढ़ जाता है बहुत, नो सो मेनी वर्ड्स, सो मेनी सेंटेंसेस पोरिंग आउट, नो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, बस हो गया, अभी सुन लिया मैंने एक बार, सो रिपीट करते बार 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 बार। एकदम स्तुति करनी है किसी की, किसी को सराहना है, किसी को गुड बोलना है, तो शब्द एकदम कम हो जाते, मिलते ही नहीं शब्द, आई फाइंड नो वर्ड्स। लोग कहते हैं कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द ग्लोरीज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स इन माई हार्ट ऑल्सो, सो आई विल लाइक गेट ऑन माई टंग। इसलिए भगवान के विषय पे, भगवान के विषय में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किसमें, लेने में, देने में हम कंजूस जरूर होंगे, लेकिन भगवान जब स्वयं को प्रकट कर रहे हैं अपने नाम के माध्यम से, तो उनको लेने में कम से कम कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उनका नाम लेना, उनका नाम पुकारना, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंजूसी किया तो सब कुछ खत्म है जीवन में, कुछ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति। और जब भौतिक विषयों की चर्चा होती है तो हम कितने चाव से उसमें भाग लेते हैं, हमारा पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए कितना कोशिश करते हैं हम लोग, और भगवान के विषय में सब शांति हो जाती है। इसलिए अपने भाग्य को बदलना है तो भगवान को स्वीकारने में हमें बहुत आतुर रहना चाहिए, ईगरली वेटिंग टू एक्सेप्ट द लॉर्ड। सतर्क रहना चाहिए जब ऐसी बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, भगवान के विषय में भी चर्चा होने वाली है, तो अगर नींद भी आती होगी तो खड़े होना चाहिए। अगर कोई मन यहाँ वहाँ भटक रहा है तो उसको एक जगह लाना चाहिए। ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवश्येत, कोशिश करनी चाहिए किसी प्रकार से भी, भगवान का विषय जब चलता है तो हमारे सारी इंद्रियां सतर्क होनी चाहिए, टू एक्सेप्ट, टू रिसीव, स्वीकार करने के लिए हमारी इंद्रियां तत्पर रहनी चाहिए उस समय। अगर हम कभी समझो विषय बदलेंगे और कहेंगे कि आज शाम को 12 बजे के पहले 1 करोड़ रुपए मिलने का मैं नुस्खा बताता हूँ, तो सबकी नींद उड़ जाएगी। यस, वॉन्ट टू हियर इट बिफोर आई स्लीप टूडे। उसी प्रकार से और एक उदाहरण देते हैं, अगर हम लोग बहुत थक के, अभी इतना थके हुए हैं कि अभी कभी सो जाए ऐसा लग रहा है, खाना भी नहीं चाहिए आज, मेरे को केवल सोना है बस, और सब बंद करके सो गए और फ्रंट डोर भी लॉक कर दिया, सोने ही वाले हैं, उतने में आवाज़ आती है कि कोई व्यक्ति हमारे फ्रंट डोर में चाबी डालकर दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी नींद आने पर भी नींद सब उड़ जाएगी हमारी, कितनी भी नींद आनी होगी एकदम सतर्क हो जाएंगे, शरीर पूरा ढीला होगा, लेकिन यू विल बी अलर्ट हु इज पुटिंग की इन माई फ्रंट डोर। अगर उतनी सतर्कता भगवान के नाम में हमारी होगी तो कितना जीवन यशस्वी होगा हमारा, सोचो। अरे भगवान का नाम पुकारा जा रहा है, मेरी सारी चेतना मुझे मेरे कान में इकट्ठा करनी चाहिए वो नाम को स्वीकार करने के लिए, उसके बाद सारी मेरी कॉन्शियसनेस जो है मुझे जबान में इकट्ठा करनी होगी उनको पुकारने के लिए, फिर कान में, फिर मुंह में, फिर कान में, मुंह में, अगर मेरी सारी चेतना उसमें अगर केंद्रित है तो भगवान दूर नहीं है, भगवान बड़े पास में है। अगर पुकार में आर्त भाव है तो आपके बिल्कुल पास में है, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। अगर पुकार में अगर जान नहीं है तो मीलो दूर है आपसे, और संकोच है उनको पुकारने में, मीलो मीलो दूर है, लोक अनेक लोक दूर हैं, जन्म जन्मांतर से दूर हैं। तो हमारा भाग्य का उदय करना हमारे हाथ में है, जितने हम उत्सुकता से भगवान का नाम और उनकी कथा और उनका श्रवण में उत्सुक रहेंगे उतना हम अपने जीवन का भाग्य को बढ़ा रहे हैं। भगवान की कथा का महात्म्य भी यही है। भगवान का कथा बोलना और भगवान का कथा सुनना, दोनों से दोनों व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। जो व्यक्ति पापी भी है, समझो हम तो कोई सब कुछ अभी प्रयास कर रहे हैं पाप छोड़ने का, लेकिन कदम कदम पर पाप करने का प्रयास हो रहा है फिर भी अनजाने में। लेकिन अगर कोई अगर ग्रॉसली स्थूल दृष्टि से पापी है, समझो मांस खाता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, नशा करता है, ऐसे व्यक्ति की सभा में भी अगर कृष्ण कथा कही जाती है तो उनका भाग्य बनता है, देयर फॉर्चून स्टार्ट टेकिंग बर्थ, केवल कृष्ण कथा कहने से, हरि कथा कहने से। हरि कथा कहने से सब दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है और भगवान की अनंत कृपा उस व्यक्ति पर प्रकट हो जाती है। गोपियां कहती हैं, दर्द में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है वो इस जलते हुए जीवन, हमारा जीवन जो है तप्त जीवनम उन्होंने वर्णन किया है। सुख दुख द्वंद्व जो है, अहंकार कष्ट यातना पीड़ा, इससे लिप्त है हमारा जीवन, जैसे कि हम संसार की अग्नि में जल रहे हैं। गोपियां तो उस समय उनके विरह के अग्नि में जल रही थी, लेकिन वो जीवन का वर्णन कर रही है, तप्त जीवनम। ऐसे तप्त जीवन में अगर हरि कथा, तव कथामृतम, केवल कथा नहीं है, कथा अमृत है, ये मृत्यु से बचाने वाला है, इसलिए उसको अमृत कहा गया है। तो इससे तप्त जीव शांत हो जाता है, तप्त जीव का जीवन जो है वो शांत हो जाता है और भगवान में, हृदय में भगवान के भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है, जैसे कि यहाँ पर दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। ये दीपक हम क्यों जलाते हैं? ये ज्ञान का प्रतीक है, इसके जलने से प्रकाश होता है, अज्ञान का अंधकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलता है। उसी प्रकार से हृदय में हमें भक्ति का प्रकाश उस भक्ति के दीपक से फैलाना है, इसलिए हरि कथा, हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि सेवा, ये मनुष्य के लिए की खुराक है, पोषण है ये आत्मा का, और वो हम पोषण नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। हाँ, आया और गया, समय बीता, कुछ नहीं हासिल हुआ, अगले जन्म में दुख भोगने के लिए दोबारा आया, फिर वापस चला गया। तो इसलिए अभी गौर पूर्णिमा अभी वापस आ रही है, इस साल की 15 दिन में आएगी अभी, और डॉक्टर जुगल और उनका परिवार जो है पुष्टि मार्ग में स्थित है, तो हमने सोचा कि आप उनको बाल लीलाओं के बारे में बताएंगे। भगवान की बाल लीला जो है वो सबसे मनमोहक है। भगवान की राजनीति की लीला भी बहुत सुंदर है, हरि हस्तिनापुर की और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी बहुत सुंदर है, लेकिन बाल लीला तो बाल लीला ही होती है ना। बाल लीला में कोई काला कलूटा बहुत क्रूप अगर बालक भी होगा, लेकिन अगर बाल्य अवस्था में होता है तो बहुत अट्रैक्टिव होता है बाद में वो क्रूप बन जाएगा तो कोई देखेगा नहीं उसको, लेकिन जब तक बालक है तो सब लोग खेलेंगे उसके साथ में, सब उसको देख कर आनंद लेंगे, उसके तोतले बोल, उसके चल कर गिरना, उसका शरारतें, उसकी हरकतें सबको मन को लुभाती है। तो वैसे सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि इति दृक्स्वलीलाभिर् आनंद कुंडे स्वगोशम निमाजंतम आख्यापयंतम, कि कृष्ण भगवान ने बालक रूप धारण करके नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सभी ग्वाल बाल, गोपियां, सभी लोगों को आनंद के सागर में डुबो दिया उन्होंने। यहां तक हमारे संप्रदाय के एक संत कहते हैं कि मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं केवल नंद महाराज की पूजा करता हूं, क्योंकि नंद महाराज इतने महान है कि परम ब्रह्म साक्षात जो है वो बालक बनकर उनके आंगन में रेंग रहे, घुटने चल रहे, गोद खेल रहे, स्तनपान कर रहे हैं और नटखट शरारते कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब कुछ ये? तो नंद बाबा, यशोदा मैया सबको आनंद देने के लिए, सबका दिल को रिझाने के लिए। इसलिए मैं केवल नंद महाराज की पूजा करता हूँ, सबसे अधिक वंदनीय मुझे वो लगते हैं जिनके लिए गौलोक धाम, वैकुंठ धाम का ऐश्वर्य छोड़कर वो गोकुल आए, वृंदावन आए, हाँ, और अपने आप को उनके हाथों में अर्पण कर दिया उन्होंने एक बालक के रूप में, डांट खाने के लिए, हाँ, जूठा खाने के लिए, खेलने के लिए। वो कहते हैं कि मैं वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है वो अनंत लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मान मानई, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी, अनंत लक्ष्मियाँ उनकी पूरे ऐश्वर्य के साथ में सेवा करते रहते, कोई कमी नहीं उधर। मतलब उस वैकुंठ को छोड़कर मैं गोकुल आया ये गोपियों का छाछ चुराने के लिए, मक्खन चुराने के लिए, और वहाँ मट्टी खाने के लिए, माँ की डांट खाने के लिए, बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर माँ के गोद में भागने के लिए मैं गोकुल आया। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ऐश्वर्य जो है वैकुंठ का वो भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे गोकुल का आनंद जो है वो प्रिय है। तो वैसे भगवान जानते इतने अद्भुत हैं भगवान कि उनका ऐश्वर्य और उनका माधुर्य और उनका लीला देख के हमेशा ये भ्रमित रहते थे हमेशा। क्योंकि अरे 6 दिन का बालक, इसकी छठ पूजा अभी तक जस्ट हुई है, एक गांव है छठीकरा नाम का, वहाँ पर भगवान की छठ पूजा हुई थी, षष्ठी पूजन, और उसी दिन पुतना का वध कर दिया उन्होंने। हाँ अरे क्या बालक है, समझ में नहीं आ रहा है, उत्सव चल रहा है घर पे तो चकटासुर का वध कर दिया। और फिर एक दिन खेल रहे थे ऐसे, माँ को लगा एकदम अचानक बालक बहुत भारी लग गया उन गोद में। हाँ सुंदर नन्ना सा कोमल कमल जैसा बालक अचानक लगा कि पहाड़ जैसा भारी हो गया, तो सहन नहीं हो गया वो वजन, तो नीचे रख दिया उन्होंने, और नीचे रख के फिर चले गए कुछ यहाँ वहाँ करने के लिए। अचानक तृणावर्त आया झंझावात, और वो भगवान को आकाश में ले गया, इतनी ऊंचाई पे ले गया, सब धुआं सब जगह पे धूल सब जगह पत्ते ऐसे साइक्लोन, हाँ झंझावात सब जगह हो रहा है, सब परेशान है, कहाँ गए कहाँ गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है। वो तो आकाश में राक्षस के कंधे पर बैठे हुए, फिर इतने हल्के हो गए कि उसको इतना लगा, रहे इसको और ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर ले जाऊंगा, पहचाना कितने भारी हो गए कि वो बेचारा इतनी ऊंचाई से ऐसा पटका जमीन पर, चकनाचूर हो गया पूरा, समाप्त हो गया, तमाम हो गया काम उसका। तो चल अरे क्या अद्भुत बालक है ये, कभी इधर माखन चुराता है तो क्या क्या बहाने बनाता है, और डांट डंडा दिखाने से भाग के कांपता है ऐसे, और तृणावर्त को आकाश में जाके पटकता है नीचे कौन है कौन ये। फिर आगे जाके गिरिराज को उठाया तो भी सबसे चर्चा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा बालक तो बहुत अद्भुत है, 6 साल 6 दिन की उम्र में पुतना को मारा, छट्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, बकासुर को मारा, क्या क्या नहीं किया इसने, जरूर कोई देवता है ये। नहीं देवता नहीं है, देवता लोग ऐसा नहीं करते हैं, माखन नहीं मिलने पर बच्चों के कान में पानी डालते हैं। नहीं नहीं कोई सिद्ध बाबा होगा ये, बहुत हिमालय में तपस्या करके आपके घर में जन्म लिया होगा, बोले सिद्ध बाबा ये जो आकाश में बिजली गड़गड़ती है तो भाग के माँ के गोद में आता है, ये कैसे हो सकता है। तो जो भी ऐश्वर्य की बातें हो रही है उसको प्रेम से काटा जा रहा है ना, नंद बाबा उसको काट रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि कितना महान बालक है तुम्हारा, नंद बाबा बोल रहे ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो देवता होगा तो किसी घर में चोरी करता क्या, इम्पॉसिबल है, देवता लोग तो बहुत सुसंस्कृत होते हैं ये देवता नहीं हो सकता है, नहीं इतना निर्भय है, इतने बड़े राक्षसों को किस कैसे मारता है, देखो कितने बड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात उठा के रखा था उसने, बोले कैसे हो सकता है, जब आकाश में बिजली कड़क कड़कती है तो वह भाग के माँ के गोद में आता है, तो माँ डंडा दिखा दे तो कांपता है ऐसे ऐसे, तो देवता भी नहीं है सिद्ध बाबा भी नहीं है, ऐसे करके के इतना ठहाका मार के हंसते हैं कि सब लोग अपने स्थान से जमीन पे गिर जाते हैं, और इतना पेट पकड़ के गोल गोल हंसते हैं, गोल गोल जमीन पे लोटपोट होकर हंसते 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 हंसते, ऐसी सुंदर कथा है गर्ग संहिता में उसका वर्णन है, नंद बैठक पर कैसे सब ग्वाल बाल आसन पे बैठे हुए जमीन पे गिर गए, और जमीन पे गिर के इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे, और भूल गए कि अरे इतना ऐश्वर्य संपन्न बालक है हमारा, गिरिराज को उसने उठाया था, ये सब बात को भूल गए, बोले हमारा नन्ना सा बालक है। तो ऐसे कृष्ण जो है वो छोटे से हैं एकदम, तो माता उनका श्रृंगार करती है, उनको बढ़िया से वस्त्र धारण करती है, फूलों की माला पहनाती है, उनको चंदन अगुरु कुमकुम ऐसे इत्र लगाती है, बहुत सुंदर मालाएं पहनती है, मोर पंख लगाती है, फेटा लगाती है, और वो रेंग रहे हैं। हाँ तो उनके कमर पे जो अलंकार पहना है उस पर कुछ छोटी छोटी घंटाएँ लगाई, तो टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग 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 ऐसे आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को उनका रुक जाते हैं, अरे देखते कहाँ से आवाज़ आ रही है, आप सोच सकते हैं, दो हाथ हाथों के बल पे और घुटने के बल पे रेंग रहे हैं, उस पर रुक जाते हैं, और जैसे सिंह होता है ना वो ऐसा टर्न करके देखता है ना कहाँ से आवाज़ आ रही है, अपने ही कंधे के ऊपर से देख रहे हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे जा रहे हैं। फिर वहाँ से वो आंगन में जाते हैं और पंछी को देखते हैं, तो पंछी को पहले देखते हैं तो पंछी की प्रतिमा भी देखते हैं जो रत्नों से भरे हुए खंभे हैं नंद भवन में, उसका वर्णन क्या करें। नंद भवन का तो वर्णन ऐसा किया गया कि पूरे ब्रजभूमि का वो मुकुट है, ऐसे नंद भूमि का वर्णन किया है, नंदगांव का सभी ब्रजभूमि के ऊपर पहना हुआ मुकुट है वो, राज मुकुट है, और बहुत सुंदर उसकी दीवारें और महल और सुंदर वर्णन किया उसका, सभी उसके दीवार पर रत्न है पाचू है, तो उसमें पक्षियों की प्रतिमा देख रहे हैं और उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सब गोपियां हंस रही है उनको देख के। फिर नन्हे से बालक के रूप में अज्ञानी है इसे दिखाते हुए, जैसे बालक ऐसे देखता है ना हर चीज़ को हाथ लगा के देखता है क्या है इस वस्तु में, क्या उसका एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरेशन क्या है इस दुनिया में, जो सभी वेदों के प्रणेता है रचेता है, सभी ज्ञान सब ज्ञान जो है उनके तरफ से प्रकट होता है, वो अज्ञानी बनकर ढूंढ रहे हैं क्या है दुनिया में, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज इफ इन इग्नोरेंस, जबकि वो सर्वज्ञ है सब कुछ जानते हैं। तो गोपियाँ उनसे बहुत मजाक करती हैं, हम कहते हैं ना छोटे बालक को शो मी योर आइज, तो बालक आपको आँख दिखाएगा, वेर आर योर ईयर्स, तो ईयर दिखाएगा। तो ऐसे हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे कृष्ण के विषय में भी हुआ करता था, जो भी हम खेल खेलते हैं ना वो सब खेल कृष्ण खेल चुके हैं, याद रखना आप, एवरी गेम दैट वी हैव प्लेड श्री कृष्ण ऑल्सो हैज प्लेड, क्योंकि सारे खेल सारा चीज़ जो है उसका उगम भगवान कृष्ण है। तो गोपियाँ भी पूछ रही हैं कहाँ है तुम्हारे कान, तो भगवान दिखा रहे हैं मेरे कान है, कहाँ है आँख तुम्हारी, आँख दिखा रहे हैं, फिर तुम्हारा तुम्हारे दांत कहाँ हैं, तो भगवान हमारा हाथ जो है उंगली मुँह की तरफ लेके जाते हैं, बोलते हैं कि अभी तक मेरे दांत आए नहीं हैं ऐसे बताते हैं, टिल नाउ माई टीथ हैव नॉट ग्रोन। तो उपनंद जो है वो नंद बाबा के बड़े भाई हैं, तो उनकी पत्नी का नाम प्रभावती है, पांच भाई हैं ना उनको, नंद बाबा के चार भाई हैं, कुल मिला के पांच लोग हैं। तो ऐसे कहा है कि इनकी जो पत्नियां हैं, इन्होंने नारद मुनि वशिष्ठ मुनि भारद्वाज मुनि ऐसे बड़े बड़े मुनियों की बहुत सेवा की थी, और उनके फल के स्वरूप उनका विवाह इन नंदों के घर में हुआ, ताकि उनको नित्य रूप में कृष्ण का दर्शन जो है होता रहे। तो ये जो उपनंद की पत्नी है प्रभावती, वो आके पूछती है कि आपके बाबा कौन हैं, आपके माता कौन हैं, तो बड़ा शर्मा कर वो अपने माता की ओर उंगली दिखा रहे हैं, यशोदा की ओर माता की उंगली दिखा रहे हैं, और नंद बाबा की ओर पिताजी के लिए उंगली दिखा रहे हैं, ये मेरे पिता हैं, उनका नाम क्या है, तो वो कह रहे हैं, तो उनको लगेगा कि भाई तोतले बोल में बोलेंगे, लेकिन अचानक एकदम सुसंस्कृत एकदम पढ़े लिखे होते ना विद्वान, उसकी तरह वो नाम बताते हैं यशोदा माता और नंद पिता और बाद में बार बार माता माता पिता 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 बोलते रहे, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते। फिर उनका घर जो है वो रत्नों से भरा हुआ है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो जब वो उस कमरे में जाते हैं अपने घर के, तो अपनी प्रतिमा देखते हैं उसके अंदर, तो उसको देख कर वो डर जाते हैं कि ये कौन है, मेरे जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा है, मैंने हाथ ऊपर उठा तभी हाथ उठाता है, वो डर जाते हैं, सब गोपियाँ देख रही हैं। तो वो उस प्रतिमा को पोछना चाहते हैं, शी वॉन्ट्स टू वाइप ऑफ द इमेज, लेकिन वो देख रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो भी प्रतिमा को पोछने का प्रयास कर रहा है, मैं उसको पोछ रहा हूँ तो मुझे पोछने का प्रयास कर रहा है, तो डरते हैं भगवान, तो डर के मारे फिर सब गोपियाँ देख रही हैं उनको, और डर के फिर तुरंत जाके माता की गोद में जंप कर लेते हैं, और सब लोग सोचते हैं अरे इतना निर्भय बालक है तृणावर्त को मार सकता है, लेकिन नंद भवन में जो प्रतिमा दिखाई पड़ रही है उसको देख के डर रहा है, ये क्या अद्भुत बात है। फिर वो कुछ समय के बाद में थोड़ा खड़ा होने का प्रयास करते हैं ना, हमारे बालक कैसे होते हैं ना, वो टेबल को पकड़ के खड़े होते हैं ना, ऐसे माता की साड़ी को पकड़ के ऐसे खड़े होने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो वो जब खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं तो गिर जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, माता को देखने लगते हैं, तो माता आती है फिर उनको हाथ देती है, उंगली देके खड़ा करती है चलाने लगती है, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, सारे अनंत ब्रह्मांडों को चलाते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत लोक है, एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। वैसे अनंत ब्रह्मांड जैसे किसी बोरी के अंदर अगर सरसों के दाने भर दे जाए और आपको कहा जाए गिनो उसको कितने दाने हैं, गोल्ड मेडल देंगे आपको, गिनो कितने दाने हैं सरसों के, तुम गिन नहीं सकते उसको। वैसे अनंत ब्रह्मांड है, वो सबको चलाते हैं, ऐसे सुंदरता से चलाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी कोई टकराता नहीं, कभी इधर सब कुछ बढ़िया चलता है, सूरज चांद अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं। सृष्टि को चलाने वाले जो है वो अपनी माता के हाथ पकड़कर चलना सीख रहे हैं, यही ब्रज की महिमा है। वो अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर एकदम अज्ञानी बालक बनकर आते हैं और सब कुछ बोलना चलना सब सीखते हैं, खाना कैसे है, चबाना कैसे है। यहाँ तक कि जब कोई सख्त खाना होता है तो माता उनको चबाकर नरम करके फिर खिलाती हैं। और कृष्ण भगवान बताते हैं रुक्मिणी जी को कि आप बड़ा अच्छा भोजन बनाती हो, लेकिन बात ऐसी है कि जो मेरी माता सख्त खाना अपने मुंह में डालकर नरम करके फिर निकाल कर मुझे खिलाती थी, उसका स्वाद कुछ और था। वो 56 भोग में भी नहीं है तुम्हारे, क्या करूँ, वो सत्य है। आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, ऐसा नहीं कि मैं आपके खाना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। उसको चखने के लिए वो सब कुछ वैकुंठ का भी आनंद जो है छोड़ के आते। तो फिर जब माता उनको हाथ में लेकर गिरने से बचाते हुए चलने को सहायता करती है तो बड़े खुश होकर हंसने लगते हैं। फिर गोपियाँ आती हैं, वो कहती हैं नाचो नाचो, हम तालियां बजाएंगे, आप नाचो फिर हम आपको मिठाई देंगे। तो फिर वो तालियां बजाते हैं, वो तो इसी ताल पर गाना है, नाचना है आपको, टुमक टुमक के नाचो। तो फिर इतने धन्य से ठाकुर जी जो हैं जिनको अभी तक खड़ा भी होने का नहीं हो रहा है, वो नाच रहे हैं बहुत सुंदरता से, और फिर ऐसे सुंदर तरीके से खड़े हो जाते हैं, एकदम आकर्षक तरीके से, वेरी आर्टिस्टिक जेस्चर। कि देखिए गोपियाँ बहुत मोहित हो जाती हैं, सब उनको मिठाई खिलाती हैं। जो सबको चलाते हैं, सबको नियंत्रण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, सब लोग उनके लिए तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, और उन्हीं के लिए सब प्रयत्न किया जाता है, सब तपस्या ज्ञान अर्जन जो भी है विरक्ति है उनके लिए कही गई है। वो व्यक्ति सब कुछ भूलकर, अपना पद भूलकर गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, जो गांव की गंवार लड़की है बाह्य दृष्टि से, हाँ ये तो बहुत परम सिद्ध भक्ता हैं वो सब लोग। तो क्या भगवान दिखा रहे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम चाहिए, वो प्रेम के लिए वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो मिठाई विठाई खाते हैं, फिर वो गोपियाँ पूछते हैं कि अरे तुम्हारे छाती पर ये सोने का जो गुड़िया है ये क्या तुम्हारी पत्नी है क्या? आप जानते हैं ना स्त्री वस्त्र का चिन्ह है, भगवान के छाती पर जो है वक्षस्थल पर एक हाउ टू से टफ्ट ऑफ गोल्डन हेयर, एक झुमका होता है सुनहरे बालों का, लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया है, परमानेंट पोजीशन। तो वैसे गोपियाँ मजाक मजाक में पूछ रही क्या ये सुंदर गुड़िया आपकी पत्नी है क्या? तो कह रहे हाँ ये मेरी पत्नी है, और लोग जोर से उसे हंस रहे हैं, वो सत्य बता रहे हैं लेकिन वो लोग लग रहा है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। और कभी कभी आपकी माता को बोलते थे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही वराह हूँ, मैं ही मत्स्य हूँ। तो बोले बावड़ा हो गया तू, पागल हो गया है, ये तो विष्णु के नाम है सब। बोले हाँ मैया मैं ही हूँ सब, मैं ही विष्णु हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। वैसे बालक बोल रहा है तो माँ हंस रही जोर जोर से। सत्य बता रहे लेकिन वो ऐसा माधुर्य भाव है कि कोई ऐश्वर्य वहाँ टिकता ही नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं आनंद ले रहे हैं कि हमारा बालक इतना अद्भुत है, सब जानता है, पता नहीं कैसे जानता है, हमने तो सुना ही नहीं उसको। लेकिन माता उनको फिर सुनाती थी, जब वो सोते थे तो आग्रह करते थे कि राम की कथा सुनाओ, नरसिंह की कथा सुनाओ, रोज सोते हुए सुनाते थे। लेकिन जो नहीं सुनाते थे उसके बारे में वो बताते थे, तो उनको आश्चर्य होता था, हमने कभी बताया नहीं, कैसे पता है उसको। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी यही सत्य है, नित्यानंद प्रभु के बारे में भी यही सत्य है, अपनी बाल लीला में वो सब जो किसी ने उनको बताया नहीं था वो लीला वो करते थे खेल खेल में, और बहुत अद्भुत एक्टिंग करते थे, ऐसा एक्टिंग करते थे कि लक्ष्मण का जब उन्होंने रोल किया था, नित्यानंद प्रभु तो लक्ष्मण जी का ही अवतार है ना, बलराम जी का अवतार है, तो लक्ष्मण जी का रोल जब किया था तो लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति लगती है ना इंद्रजीत की, और बेहोश हो जाते हैं, तो ये बेहोश हो जाते हैं और आगे का डायरेक्शन तो दिया ही नहीं किसी को, तो बेहोश ही पड़े रहते हैं कई घंटे बेहोश पड़े हैं, क्योंकि आगे का सीन क्या करना है पता नहीं, जब तक ये नहीं उठेंगे तो क्या होगा, तो सब परेशान हो जाते हैं। फिर वो आके उनके कान में कीर्तन करते हैं तो फिर ये जग जाते हैं, बोलते हैं कि आगे का ऐसा ऐसा करना है। इतने भाव में लोगों को, माता पिता को आश्चर्य होता है, अरे नित्यानंद प्रभु के माता पिता को कि कैसे उसको पता है ये स्टोरी, हमने कभी बताया नहीं था उसको। उसी तरह से भगवान भी लीला कर रहे हैं। फिर जो पहली बार बहुत सारा अलंकार यशोदा मैया ने उनको पहनाया, बहुत सारा पीताम्बर पहनाया बहुत अच्छी तरह से, कमर पट्टे के साथ, कमर का अलंकार पहनने के साथ, तो उनको बहुत भारी भारी लगने लगा। तो आपने देखा ना, हम अपने बालकों को, छोटे छोटे बालकों को स्कूल में होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ड्रेस, क्या ड्रेस, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो इतना सा बालक इतने बड़े कपड़े पहन के रखा है, तो ऐसा ना वो मम्मी बहुत भारी हो रहा है, सब निकालने, नहीं बेटा अभी रखो थोड़ा टाइम है अभी थोड़ा, उसके 5 मिनट के बाद में निकालना। ऐसे भगवान भी करते हैं, जैसे ही मैया बड़ा बड़ा वस्त्र पहनते तो उसको निकाल के फेंकना चालू करते हैं, यहाँ से अलंकार निकलते बहुत भारी है, बहुत चुभ रहा है यहाँ पर, तो उनको जब अलंकार निकालते हुए, वस्त्र को निकालते हुए देख रहे हैं यशोदा मैया, नंद महाराज, वाणी माता को बहुत आनंद हो रहा है देख के, क्योंकि हर उनकी जो कला है और जो कार्य है वो इतना मधुर है, इतना मन लुभावना है। फिर एक बार यशोदा रानी जो है ना, उनका नाम है ब्रजेश्वरी, यानी कि वो ब्रज की, ब्रजराज जो ब्रजेंद्र नंदन नंद महाराज हैं उनकी पत्नी है वो, तो सब सखियाँ उनको आके श्रृंगार करती थी, उनके बाल बनाती थी, उनको अलंकार पहनाती थी, उनको बहुत सारा सेवा करती थी, उनका महावर जो होता ना पैर पे आल्टा बनाती थी, पत्रावली बनाती थी उनके चेहरे पर, हाथ पर मेहंदी रचाती थी। तो एक दिन वैसे ही श्रृंगार कर रहे थे उनका, तो कृष्ण भगवान आते हैं, जो जो श्रृंगार गोपी ने लगाया है उसको निकाल कर गलत जगह पर लगाते हैं। बीच में घुस के आते सब लोग गोपियों के बीच में, माता के शरीर पर चढ़ते हैं और जहाँ जहाँ अलंकार लगाया वहाँ निकाल कर दूसरी जगह लगा देते हैं, कान का कुंडल निकाल कर गले में लगा देते हैं, गले का कुंडल लगा कर कान में लटका देते हैं, सब गोपियाँ बहुत आनंद तालियाँ पीट कर आनंद भक्त करती हैं। फिर कृष्ण और बलराम दोनों का जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं वो, तो उनको बहुत गाय के बछड़े पसंद हैं, बहुत ज़्यादा, इतना सुंदर श्रृंगार करके रोणी मैया और नंद और यशोदा मैया उनको भेजती हैं, चंदन लगाकर, रगुरु और कुमकुम लगाकर बहुत सुंदर श्रृंगार करके भेजती हैं, और तुरंत कहाँ जाते हैं, गौशाला में, वहाँ जाकर क्या करते हैं, पहले जाकर बछड़ों का पूछ पकड़ते हैं, खड़ा होने को भी नहीं उनको हो रहा है अभी तक, लेकिन पूछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही पूछ पकड़ते हैं आप समझते हैं ना, बछड़े भी बहुत बिथर जाते हैं कि कौन किसने पूछ पकड़ी है, और दूसरा कारण उसका यह है कि कृष्ण बलराम ने हमें स्पर्श किया है, इसी आनंद से उनको बाहर आ जाती है और कूदने लगते जोर जोर से। आप देखा ना बछड़े जब भी दूध पी के पेट भरता है उनको, तो कितने जोर से कूदते हैं एकदम, ऐसा ऐसा लगता है दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने खाली कूद रहे हैं दोनों पैर से, ऐसे कूदने लगते हैं, तो ये छोटे से बालक जिनको खड़ा भी नहीं होने जा रहा है वो गिर जाते हैं पेट के सहारे। तो हाथ में पूंछ है, पेट जो है वो जमीन पर है, और जमीन में क्या है, गोबर है और गौमूत्र है, उसका मिश्र एकदम फाइन मिक्सचर है एकदम, तो उसमें भाग रहे हैं बछड़े, कृष्ण बलराम दोनों पूछ पकड़े हुए हैं और भाग रहे हैं बछड़े, और सब गौशाला में पेट के सहारे सब लोग घूम रहे हैं। तो रेणी मैया आंखों में आंसू देकर देख रही है, देखो देखो यशोदा रानी, देखो दीदी आकर देखो क्या हो रहा है। वो कहते हैं, व्यास देव भी कहते हैं कि यो क्या हो रहा है उसका मैं सही शब्दों में आपको वर्णन नहीं कर सकता, क्या आनंद बरस रहा है गौशाला में, क्या रोहिणी मैया यशोदा को दिखाने जा रही हैं, वो उसका वर्णन हम शब्द में नहीं कर सकते, इतना आनंद वहाँ बरस रहा है। जैसे छोटे छोटे बालक, इतने सुंदर बालक जो हैं रत्नों की तरह हैं, जो अपने श्रृंगार में अभी क्या मिक्स हो रहा है, गोबर और गोमूत्र का मिक्सचर मिक्स हो रहा है उसके अंदर, और वो घूम रहे हैं, और उनका वो चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे सब जगह गोबर लग रहा है। कभी कभी जाकर ये अपने आप को गोबर में डुबा देते हैं और बैठ जाते हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ पर तो लाखों गायें थी, कोई गोबर की कमी नहीं थी, तो गोबर के ढेर में जाके छुप जाते थे, सब जगह ढूंढ रहे हैं उनको। और कहा गया है कि जब सुंदर श्रृंगार किए हुए छोटे से कृष्ण भगवान जब ही बलराम जी को आलिंगन देते थे, तो ऐसा लगता था कि किसी गोरे शंख में एक नीला सा मणि रखा हुआ है, बलराम जी बड़े हैं ना, वो गोरे रंग के हैं, गोरे दाऊ जी, और कृष्ण भगवान छोटे हैं, उनको आलिंगन देने लगता है क्योंकि शंख में नीला नीलमणि जो है वो छुपा हुआ है, और इनका तेज, इनके आभा, इनका जो एफलजेंस था वो इतना सुंदर था। तो जब ये नीला नीली आभा और शुभ्र आभा जब मिक्स हुआ करती थी तो कभी कभी यशोदा मैया भी कृष्ण भगवान को पहचानने में गलती करती थी बलराम जी को, कि कृष्ण की नीली आभा जब बलराम पर गिरती थी तो बलराम नीले दिखाई पड़ते थे, जब बलराम की गौरी आभा जब कृष्ण पर गिरती तो वो गौरी दिखते पड़ते थे। तो यशोदा मैया बलराम जी को कृष्ण समझ कर लेके जाती थी, थोड़ा दूर लेके जाने पर ये समझते थे कि अरे ये तो बलराम है, प्रेम तो दोनों के लिए है, लेकिन वो गलती करती थी। ये छोटे नन्हे बालक थे, बहुत नटखट थे, कभी डंडा लेकर बड़े बड़े जानवरों को भगाते थे, और भगाते भगाते जंगल में प्रवेश करते थे, बड़े बड़े बैलों को जाकर सिंह पकड़ते थे। तो साथ साथ में उनका साहस देखकर आनंद हो रहा है और साथ साथ का डर भी लग रहा है कि पता नहीं कभी इनके पैर के नीचे ना आ जाए, लेकिन हमेशा बड़े बड़े खूंखार जानवरों के साथ में खेलते थे सबके आंखों के सामने, ना वो खुद जाकर उनको बचा पा रहे हैं ना वो छोड़ रहे हैं, और दोनों आराम से खेल रहे हैं, शेर और बैल और बड़े बड़े जानवर जो हैं बड़े प्रेम से खेला करते थे। तो धीरे धीरे जब ही स्तनपान उनका कम होने लगा और ऊपर का दूध भी पीने लगे और चलने भी लगे तो उनको माखन चोरे की स्फूर्ति हुई कि अभी कुछ अद्भुत लीला की जाए। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने ही घर में, शुरुआत उन्होंने अपने घर से की, फिर जब ज़्यादा चलने को उनको हुआ, चलना मुमकिन हुआ, तो फिर बाहर जाकर चोरी करने लगे, लेकिन ट्रेनिंग अपने घर से लिया। तो सबसे पहले जब चोरी करने लगे तो फिर वो जब भी मटके में हाथ डालकर माखन खा रहे हैं तो देखते हैं कि मेरे साथ में और भी कोई खा रहा है, तो देखते हैं तो क्या है कि मैं जैसे खा रहा हूँ वैसे वो भी खा रहा है, मेरा हाथ जाता है मटके के अंदर उसका भी हाथ मटके में जाता है, और जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे भी वही तभी मुझे देखता है, तो समझ में आता नहीं कौन है ये। तो जब वो हाथ निकाल कर डाल कर खा रहे हैं और उसको देख रहे हैं तो भी उसको देख रहे हैं, वो भी खाने का प्रयास कर रहा है उसको देख रहा है, तो कृष्ण कहते हैं देखो मैं तुम्हें और माखन दूंगा, लेकिन मैया को कहना नहीं बिल्कुल। हाँ वो उनकी प्रतिमा थी जो वो दीवार में देख रहे थे, और उतने में यशोदा मैया और रोहिणी मैया आते हैं, देखते हैं कि ये अपनी प्रतिमा से बात कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। जब अंदर आते हैं मैया को कहते हैं मेरे आप हमारे घर पे आज एक चोर आया था और वो मटके में हाथ डालकर खा रहा था, मैंने समझाया बहुत मत खाना तुम उसे, मैंने गुस्सा किया तब उसने भी मुझसे गुस्सा किया और बहुत लोभी था वो मक्खन का, लेकिन मैं नहीं मैं लोभी नहीं मक्खन का, मैं मक्खन कभी चोरी नहीं करता हूँ। एक बार ऐसे ही मक्खन में हाथ डालकर खा रहे थे ऐसे, तब यशोदा मैया आकर उसको पकड़ती, बोले तुम हमेशा मैं तुम्हें खिलाती हूँ फिर भी तुम चोरी करते हो, नहीं मैया तुमने मुझे वो क्या लाल रंग का कौन सा होता है वो पाचू ना, रूबी, रूबी किसको कहते हैं, व्हाट इज़ रूबी, वो बहुत उग्र होता है, हाँ गर्म होता है बहुत, तुमने मुझे रूबी के कंगन पहना के रखे हैं, मेरा हाथ जल रहा है इसलिए मैं ठंडा करने के लिए उसको माखन में रखता हूँ। तो फिर मैया कहते ओ तुम्हारा हाथ जल रहा है इस गहनों की वजह से, तो वो हाथों हाथ में लेकर हाथ को बहुत चूमती है प्रेम से, बोले मैं अभी आपके हाथ के सारे जो है कंगन उतार देती हूँ। ये जो वर्णन इसमें दिया है गोपाल चंपू में, आनंद वृंदावन चंपू में, इसमें अनंत बार जो जो लीला हुई है उसमें अनंत बार माता जो है कृष्ण भगवान को चूमती रहती है, और इसका वर्णन सत्यव्रत मुनि करते हैं, वो कहते हैं इनका बहुत सुंदर घनश्याम रंग है, बादल जैसा रंग है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर घुंघराले बाल जो है उनके गाल पर आ रहे हैं, और ऐसे सुंदर चेहरे को माता बार बार अनंत बार चूमती है तो वो नीलिमा पर लालिमा छा जाती है। हम देखते हैं ना बालक को, एक जैसे मेरी पत्नी है अभी, वो दिन में बार से बहाने में को कितनी बार चूमती होगी उसको गणित कर सकता है क्या कोई, हंड्रेड्स एंड टाइप्स इज किसिंग हर अगेन एंड अगेन। तो वैसे यशोदा मैया भी अपने कृष्ण भगवान को दिन भर अनंत बार चूमती रहती थी, जैसे भी हाथ को चूम रही है, फिर गोद में लेकर सर को चूम रही है, कभी बालों को चूम रही है, कभी गालों को चूम रही है, कभी होंठों को चूम रही है, कभी हनु को चूम रही है। तो उसका सुंदर वर्णन जो है सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वो जो नीलिमा के ऊपर लालिमा उत्पन्न हो रही है बार बार चूमने पर, उसका छटा और सौंदर्य का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। और वो सुंदर छटा जो उत्पन्न हो रही है उसको देखकर यशोदा मैया एकाग्र हो रही है, सब कुछ भूल रही है, समाधि अवस्था में गई है, वो उसी को देख रही है, बस चेहरे को देख रही है। तो ये सबसे सर्वोच्च समाधि अवस्था है जो पूर्णता कृष्ण में लीन है। उनकी दृष्टि जो है कृष्ण का सुंदर मुख कमल का दर्शन करने में पूर्णता लीन है, इससे बड़ी समाधि कोई नहीं है। अगर आप वैकुंठ में भी नहीं है, गौलोक धाम में भी आपका निवास नहीं है, तो भी ये उससे भी सर्वोच्च स्थिति है, जिस स्थिति में हम हमारे इंद्रियों को कृष्ण में पूर्णता 100% लीन करके रखा हुआ है, वो जीवन का अंतिम चरम स्थिति है जो प्राप्त करने का हम प्रयास करना चाहिए। यशोदा मैया उस अवस्था में है। तो फिर उनके कंगन निकाल लेती है और रोज उनकी तरफ शिकायत चल रही है कि ये माखन चोरी करते हैं। एक दिन वो ऐसे ही रो रहे हैं तो मैया कहती है, कोई बात नहीं, आप रोना बंद करो, जितना घर में मेरा माखन है वो सब तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है, जब चाहे तुम छीन सकते हो, जब चाहे लूट सकते हो, लेकिन रोना बंद करो। हाँ, वही माता जब जो नहीं रो रहा है तो माखन चोरी डांट रही है, और जब वो रो रहा है तो कह रहे नहीं माखन खा लो, जो सब कुछ तुम्हारा है। इस तरह से इनका जो विरोधाभास है इनकी क्रियाओं में, हाँ, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, उसका मतदार्थ एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कभी उल्टी बात करेंगे कभी सिल्टी बात करेंगे, लेकिन करेंगे उनको प्रसन्न करने के लिए। हाँ, जैसे वो शिवजी महाराज आए थे कैलाश से, हाँ, साधु का रूप धारण करके आए थे नंदगांव में दर्शन करने के लिए, बहुत सुंदर स्थान है वहाँ पर आशीश्वर महादेव। तो गौलोक धाम में जैसा है ना, भगवान का रूप जो है वो 16 साल का रहता है, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, वहाँ बाल रूप का दर्शन नहीं है, वात्सल्य भाव है लेकिन बाल रूप का रेंगता हुआ दर्शन नहीं है वहाँ पर। केवल पृथ्वी पर जब अवतार लेते हैं तभी वो जन्म लेते हैं, रेंगते हैं, तोतले बोल बोलते हैं, चलना सीखते हैं। तो बाल रूप का दर्शन करने के लिए शिवजी कैलाश छोड़कर आते हैं साधु बनकर, और आते हैं नंद भवन में, वो दर्शन मांगते हैं तो वो कहते हैं हीरे मोती ले लो, चावल ले लो, जो चाहिए ले लो, लाला के दर्शन नहीं कराएंगे आपको। तो कहते नहीं नहीं हमको आपके दर्शन चाहिए, हमको ये सब हीरे मोती में, हम बड़े विरक्त हैं, हमको इसमें हीरा मोती चावल में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम लाला के दर्शन करने आए। बोला तो अच्छा, आप सब लोग कभी औरत बन के आते हो, कभी झंझावात बनकर आते हो, कभी गाड़ी बनकर आते हो, कभी बदक बनकर आते हो, कभी बैल बनकर आते हो, हाँ राज साधु बनकर आए हो, आप सब कंस के चेले हो, कुछ नहीं दूंगी आपको दर्शन लाला का, चले जाओ यहां से, दरवाजा बंद कर देती। अभी क्या कर रही हो, एक सुंदर तेजस्वी साधु को भगा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कंस का दूत है और ऋषि का रूप में मेरे बालक को खत्म करने के लिए आया है, तो बालक की रक्षा करना मेरा फर्ज है, चाहे कितना बड़ा साधु क्यों ना हो, जब तक मेरे मन में शंका है मैं बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। तो ये महाराज जी बहुत दुखी हो जाते हैं, वहां जाके वन में बैठ जाते हैं आशीश्वर वन में, और रोते हैं बहुत, अरे इतनी दूर से आए हमको दर्शन नहीं देंगे ठाकुर जी, आप दर्शन नहीं देंगे हमें, मैया ने तो भगा दिया, क्योंकि आप मैया के कैद में हैं अभी ना, अपने आप को मैया के गोद में सौंप दिया आपने, मैया आपकी मालिक है, सब नियंत्रण उनके हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं, और आपने भी उनको अपने गोद में अपने आप को उनको अर्पण करके रखा है, तो मैं तो हताश हो गया, और वहां पर आके रोते हैं बहुत। तो इनका जैसे मैं बोलता हूँ ना, पुकारो पुकारो कीर्तन में पुकारो, क्योंकि तब तक भगवान का ध्यान आकर्षित नहीं होता है, वो इतना रोते हैं आशा रख के मन में कि कब दर्शन देंगे मुझे। तो वहां पर ठाकुर जी बालक रूप में हो तो क्या हुआ, ठाकुर जी है ना, वो अंतर्यामी जानते हैं कि मेरा भक्त रो रहा है वहां पर, कुछ करना चाहिए अभी, तो अपना सबसे बड़ा अस्त्र जो है ना रोना, उसको निकाल लेते हैं और जोरदार रोने लगते हैं। तो माखन दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, नाच नाच गीत गाया जा रहा है, तो रोते रुकते नहीं है। तो शंकर जी की जो पत्नी है दुर्गा देवी, वो कृष्ण लीला में पूर्णमासी गोपी बनकर आती है लीला में सहभाग देने के लिए, तो आती है क्योंकि पूर्णमासी जो है वो सभी गोपियों के गुरु हैं, और वो सब सलाह करते हैं, जब कोई संकट आता है तो उनको बुलाते हैं, तो यशोदा मैया उनको बुलाती है, क्या करें लाला रो रहा है क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि वो बड़ा साधु आया था ना, बहुत दूर से आया था, वो आपने उसको दुकार भगा दिया, उसको इतना तेजस, क्योंकि उनके पति है ना, वो जानती है उनके पति का तेज क्या है और पति के दिल में क्या है वो भी जानती है। तो कहती है कि क्यों ना उसी को बुलाया जाए, सखियों को भेजो, शायद उसके दर्शन से, आशीर्वाद से, स्पर्श से ये रोना बंद करेगा। तो वही यशोदा जिसने लाला के सुरक्षा के लिए उस साधु को भगा दिया है, उसको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए गोपियों को भेजती है। जंगल में जाते हैं और सम्मान से उनको, प्रेम से एकदम, जैसे कोई होता है ना VIP गेस्ट, ऐसे उनको बुला के लेके आते हैं। मतलब क्या, दो विरोधाभास जैसे कृति कर रहे हैं, एग्जैक्टली कॉन्ट्ररी टू वन अनदर, दोनों एक्टिविटी एकदम उल्टी है एक दूसरे की। लेकिन ऐसी गोपियां यशोदा वाणी हमेशा करते रहती हैं, उनका जीवन ही कृष्ण के केंद्रित है। इस बार क्या कर रही है, उनको रोने से शांत करने के लिए बुलाया जा रहा है, पहले रक्षा करने के लिए भगाया जा रहा है कृष्ण केंद्र स्थान में। जब आते हैं, जब वो साधु स्पर्श करते हैं चरणों को, तुरंत भगवान रोना बंद कर देते हैं। बोले देखो, पूर्णमासी ने जो कहा था वो सही था, इनकी कृपा से ही रोना बंद हो गया। ऐसा है ब्रज का लीला। तो रो रहे हैं यहाँ पर, जब अच्छे हैं माखन चोरी कर रहे हैं तो डांट पड़ रही है उनको, और जब ऐसे किसी कारण से रो रहे हैं तो कह रहे ले लो माखन, ले लो, वो भी चुरा लो, वो भी तोड़ लो, सब तुम्हारा ही है। फिर एक बार एक सुंदर कथा आपको बताते हैं। एक बार वो सभी गोपियां बैठी थी शाम के समय। हाँ, सब लोग, यू आर ओके ना टू हियर? हाँ, एवरीबॉडी इज अवेक। हरि बोल। बहुत सुंदर कथा है, मुझे बहुत सुनकर आनंद, पढ़कर आनंद आया उसको। तो शाम का समय था और पूर्ण चांद चंद्रमा आकाश में आया था, और उसकी नीली नीली सुंदर सुंदर किरणें जो है नंद भवन के आंगन को सुशोभित कर रही थी। द ब्यूटिफुल रेज ऑफ मून वर डेकोरेटिंग दी ब्यूटिफुल कोर्ट यार्ड ऑफ नंद महाराज। अब सब सखियाँ बैठी हुई हैं, कोई गीत गा रहे हैं, और गोद में कान्हा बैठे हुए हैं, अचानक गोद से उठते हैं, और कुछ लोग यशोदा मैया को थोड़ा सा सेवा कर रहे हैं उनकी, है ना, कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ को सर दबा रहा है। तो ये अचानक उठ जाते हैं और पीछे जाकर क्या करते हैं, यशोदा मैया का पल्लू जो है वो नीचे करते हैं, फिर उनके जो सुंदर बाल बने हुए हैं, उनकी जो वेणी बनी हुई है उसको छोड़ देते हैं, और पीछे से अपने गुला अपने कोमल कमल जैसे हाथों से उनको बुलाते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। तो मैया पीछे और देखती है, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? तो वो रोने लगता है जोर जोर से, क्या चाहिए, माखन दे दूं? नहीं, मुझे अभी जो गाढ़ा माखन है वो चाहिए। बोले कौन सा माखन, अभी लेके आते हो? नहीं नहीं, फिर कौन सा माखन चाहिए? तो वो माखन चाहिए, वो आकाश में जो है ना, वो चंद्रमा को वो कह रहे हैं कि इज अ कंडेंस बटर, वो मुझे चाहिए। तो गोपिया कहते हैं, अरे ये मक्खन नहीं है, ये तो राजहंस है, वो आकाश के समुद्र में सैर कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो अभी शुरू करेगा, सुबह तक सफ़र ख़त्म हो के उस आकाश में, उस किनारे पहुंच जाएगा, उस समुद्र के किनारे पहुंच जाएगा, और मुझे वो राजहंस चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है। तो फिर दूसरी गोपियाँ कहते हैं, अरे अरे राजहंस नहीं है, ये तो चंद्रमा है, ये तो देवता है। बोले मुझे अभी कभी उससे गेंद के रूप में खेलना है, मुझे अभी अभी चाहिए। फिर वो सब गोपियाँ जो है वो अलग अलग बहाना बना रही है उसको मनाने के लिए कि नहीं दे सकते आपको। तो मैया कहती है कि भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैया कहती है, हाँ आप जो कह रहे हो सही है, ये मक्खन ही है, बहुत गाढ़ा बना हुआ गोल सा मक्खन है, लेकिन देख रहे हो उसके अंदर कितने दाग पड़े हुए हैं, वो विष के दाग हैं। बड़ा अच्छा मैया, ये विष क्या होता है, और ये विष आप जो कह रहे हो उसका दाग उस पर कैसे आया? तो बोले बेटा, एक दूध का सागर है, क्षीर सागर। बोले क्षीर सागर है, कितनी गौओं ने दूध दिया होगा उसको सागर बनाने के लिए? अरे देखो बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो केवल गाय के थनों से दूध निकलते हुए देखा है, आप कह रहे हैं शेर का सागर है, मतलब कितने करोड़ों गोपी गायों ने उनको दूध दिया होगा। नहीं नहीं, भगवान विष्णु हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो गायों को जो शक्ति देते हैं दूध देने के लिए, उन्हीं की शक्ति से शेर सागर निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छी बात। तो फिर कहते हैं कि इसका ना देवताओं ने मंथन किया था। अच्छा, जैसे हमारे गोपियां घर में मंथन करते वैसे ही किया था क्या? हाँ, मंदार पर्वत का रवि बनाया था उन्होंने, और वासुकी नाग का दोरी बनाया था, और सभी देवताओं ने मिलकर उसको मंथन किया था, और जब मंथन किया था तो बहुत उछाल उछाल हुई थी दूध का, और अचानक उसमें से विष निकला था हलाहल, तो सब देवता और राक्षस भाग गए थे उसको देखकर। फिर शिवजी महाराज आए थे, ऐसे मैया कहानी सुना रही है बालक को अपने, तो शिवजी महाराज आए तो उन्होंने सारे विष को इकट्ठा किया और अपनी अंजुली में लेकर उसको प्राशन किया। जब वो प्राशन किया ना तो कुछ कुछ कण जो है उसके बूंद जो है वो गिर गई और उसी में से बाद में चंद्रमा निकला है। आप जानते हैं ना 14 रत्न निकले जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी भी उसमें से प्रकट हुई है और जो घोड़ा है दिव्य घोड़ा ऊपर प्रकट हो गया है और चंद्रमा भी उसमें से प्रकट हो गया है। तो क्योंकि चंद्रमा उसी शिव सागर से निकला हुआ है और वो कुछ बूंदे गिरी थी वो चंद्रमा पे गिरी हुई है। देखो देख रहे ना, देख रहे हैं कि नहीं वो, इसलिए मैं उनको तुमको नहीं खिला सकती, मैं तुम्हें मेरे घर में बनाया हुआ बहुत ताज़ा और गाढ़ा मक्खन खिलाती हूँ। इस तरह से भगवान को उन्होंने शांत कर दिया। इस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं, ये चांद की लीला जो है बहुत सुंदर लीला है। भगवान बहुत देर तक अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं। यशोदा मैया बड़ी कुशलता से कहानी बताती है और उनके जो ब्रज के संबंधित प्रश्न है कि ये सब गोपियां जैसे मंथन करती है वैसे ही किया था क्या, फिर ऐसे हुआ था क्या, फिर ये जब मंथन किया तो उसमें से चांद निकला और फिर आकाश में जाके स्थिर हो गया लेकिन दाग को लेकर चिपक गया ऊपर, इसलिए हम तुमको उसको खिला नहीं सकते, नहीं तो अभी ला के देते आपको, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है इसलिए हम आपको वो नहीं देंगे जो विष के दाग से दूषित हो गया है। तो इस तरह से यशोदा मैया भगवान को श्रृंगार जब करती है तो कहा गया कि सामान्य औरत की तरह अपना जो मुंह का पानी है वो उसके शीश पर लगाती है। आप जानते हैं ना माता अपने बेटे की रक्षा के लिए अपने मुंह जो सलाइवा है उसका एक बूंद निकाल कर उस पर सर पर लगाती है ताकि किसी की नज़र न लग जाए उसको। तो सामान्य औरत की तरह मैया बेटे को पेश करती है अपने आप को और जो शेर के नख होते हैं ना वाघ नख उसको सोने में मड़वा कर उसकी माला कृष्ण भगवान को पहनाती ताकि संकट से दूर रहे। फिर गोपियाँ आती हैं हमेशा जैसे बड़े हो जाते हैं तो इनकी माखन चोरी बढ़ जाती है। हाँ कैसे बढ़ जाती है, इनके शरीर पे एक तो रत्न पहनाती है माता उनको तो रत्न से सब प्रकाश होता है, जो अंधकार में छुपा कर रखा है मटका वो भी नज़र में आता है। अरे तुम्हारा बालक ऐसा है कि कहीं भी छुपाएंगे अंधेरे में तो ढूंढ के निकालते हैं कि मक्खन के मटके कहाँ हैं। तो मैया फिर उसको अलंकार निकाल लेती है एक दिन और फिर भी माखन की चोरी होती है तो नहीं इनके शरीर से कोई आभा निकलती है, इसकी आभा से सब जगह दिखाई पड़ता है उनको कहाँ कहाँ अंधेरे में क्या क्या रखा है। और जब मैं ऊंचा टांग के रखती हूँ तो ये 4-5 बालक खड़े होकर उनके पीठ पे खड़ा होकर फिर माखन निकालता है। कभी कुछ यहाँ पर फर्नीचर रखा है उसको एक ऊपर रख के फिर चढ़ जाता है। उनको तो कंप्लेन करने का बहाना है क्योंकि जब वो माखन मंथन करती है तो यही सोचती रहती है कि मेरे घर पे आए और आज माखन चुराए, इसी को ध्यान में रखते हुए मंथन किया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, आओ कान्हा हमारे घर पे आओ, यही तमन्ना है ताकि दर्शन हो जाएगा उनका, कुछ सेवा हो जाएगी। लेकिन जब वो माखन चुरा के भागते हैं तो उनके दर्शन न होने से व्याकुल हो जाते हैं तो फिर कंप्लेन का बहाना करके नंद भवन में जाते हैं और माता को कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन माता को नहीं देख रहे हैं, किसी और जगह देख रहे हैं जहाँ दरवाज़ा है अंदर के कमरे का, वहाँ से आएंगे तो उनकी ओर नज़र लगाई गई है और माता को कंप्लेन की जा रही है। तो क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे गायों को हमेशा बछड़ों को छोड़ देता है बांधा हुआ और सब बछड़े दूध पी जाते हैं और फिर दूध ही बचता नहीं है, धोने के लिए दूध ही नहीं है, तुम अपने बच्चों को अच्छे से संभाला करो, ऐसे मैया कहती। फिर कहते हैं कि हम लोग अंधेरे में रखते हैं फिर ढूंढ के निकालते हैं, ऊंचा रखते हैं तो भी तोड़ के निकालते हैं। सबसे खराब बात क्या है, चलो खुद खा ले आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन खुद थोड़ा सा खाते और सारा मक्खन जो है बंदरों को खिलाते और बंदर लोग भी कुछ कुछ खाकर उनका पेट भर जाता है तो वो फेंकते हैं उसको। फिर ये कहता है तुम्हारा मक्खन इतना कड़वा है मेरे बंदर भी नहीं खाते, ऐसे दाने मारता है और भाग जाता है। और जब भी बहुत ऊंचा होता है मक्खन तो क्या करता है कि जो बालक सोए हैं उनके गोपियों के बालक पल्ले में सोए हैं ना उनके कान में पानी डालता है, फिर कभी उनको चिमटा निकालता है, उनको रुला देता है। हाँ और बाकी बालकों को कहता है सब लोग यहाँ पेशाब करो लघु शंका करो, इस तरह से कंप्लेंट हो रही है। कभी कभी गोपियाँ भाग भाग के उनको पकड़ भी लेती हैं तो ये गोपियों का हाथ जो है कलाई मोड़ लेता है पूरा ट्विस्ट, तो आ करती है और जोर से करूं कि छोड़ोगे मुझे, हाँ छोड़ देते हैं। फिर जब भी वो कंप्लेंट की जा रही है तो कहते हैं अंदर से, ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारे घर में जो भी कुछ है सब मेरा है, मैंने निर्माण किया है, सब सबका नियंत्रक मालिक मैं हूँ। वो तो हकीकत बता रहे हैं, लेकिन उनको कह रहे हैं शरारत कर रहे हैं। उसके बाद में कभी शाम को, सुबह के समय, शाम के समय चावल के पाउडर से, कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से वो अपने आंगन को बहुत सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं ना उसको। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस साइन टू, पहले वो गोबर से लेपते हैं उसको, फिर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं उसके ऊपर। सांप तुरंत आते हैं बाहर से, मट्टी लेकर सब डालते हैं उसके ऊपर और सब खराब कर देते हैं उसको, क्योंकि उसने कल उनको माखन देने में कंप्लेंट किया था, इसलिए आ जाकर उनके घर पर नुकसान किया जा रहा है। तो ऐसे ही रोज के इनकी माखन चोरी, सब गोपियाँ परेशान हो जाती हैं, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पे, और रोज के उनके शरारते हैं, कभी मटके फूटे जा रहे हैं, कभी खाता ही नहीं है केवल फोड़ के चला जाता है, कभी बंदरों को खिला देता है, कभी दोस्तों को खिला देता है। तो मैया कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है, मेरे घर पे इतना सुंदर माखन मैं बनाती हूँ, मेरे पास लाखों गाय हैं, उसमें से मैंने 100 गायों को अलग बनाया है, अलग उनको मैं खला खिलाती हूँ, और उनको जो कमल की खुशबू वाले घास हैं वो खिलाती हूँ उसको मैं। तो जब वो दूध देती हैं तो उसको भी कमल की खुशबू आती है, और उस दूध का जब मैं दही जमाती हूँ और मक्खन मंथन करती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, तो मक्खन बहुत और तेज़ी से गंध देता है कमल का, और वो कमल का जो गंध वाला जो मक्खन है मैं इसको खिलाती हूँ, पेट भर के खिलाकर बाहर भेजती हूँ। तुम्हारे घर में क्यों चोरी कर गए, मेरे घर में इतना मक्खन है, ख़त्म नहीं होता है इतना मक्खन मेरे पास में, आप तो झूठ कह रही हो। ये हमारे घर पे खा के भी वहाँ पर जाके चोरी करते थे हमेशा, केवल आनंद देने के लिए। फिर एक बार जो उपनंद बड़े भाई जो नंद बाबा के हैं, उनकी पत्नी प्रभावती, वो सोचती कि मैं अभी उसको पकड़ूंगी, क्योंकि वो बार बार मुझे, जो उनकी छोटी जो जेठानी नहीं है, वो क्या देवरानी है उनकी, छोटे भाई की पत्नी है ना, वो बार बार मुझे बोलती है कि तुम हमेशा कंप्लेंट करती हो उनके घर में आके हमारे लिए, और एक बार तो कभी रंगे हाथ पकड़ के लाओ उसको। तो ठीक है, अभी उसको रंगे हाथ पकड़ के लाते। तो एक दिन जब भगवान जो है हाथ डाल के खा रहे मक्खन, ऐसे ही मुंह में मक्खन लगाया, हाथ में मक्खन लगाया, कपड़े में मक्खन है, सब जगह मक्खन है, ऐसे पकड़ लेते उसको। अभी तुमको मैं आज मैया के पास ले जाके रंगे हाथ दिखाऊंगी, देखो आज तुम्हारे लाला को, लाडले को मैंने पकड़ा है, हमेशा मुझे ताने देती हो। तो ले जा रही है उसको, तो कह रहे देखो, क्योंकि उनके वो ताई जी है ना, देखो ताई जी अच्छा नहीं होगा मुझे आप ले जाओगे तो, मुझे छोड़ दो, बाद में बहुत पछताओगे ताई जी आप। तो बोले नहीं नहीं, वो तो इनकी खुशी, इतनी इतनी बार कंप्लेंट कर चुकी है, अब एक बार मिला है चोर हाथ में, तो फिर वो छोड़ेगी कैसे उसको। तो कहते देखो आगे आगे जा रहे हैं, नंद भवन पास पास आ रहा है, देखो अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो। तो वो ऐसे आगे आगे जा रही है, उसका हाथ पे पकड़ा ऐसे, वो पीछे से है, पीछे से बोलते जा रहे हैं, और वो आगे से उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है नंद भवन। तो जाते हैं एकदम नंद भवन, पहुंचते, अरे यशोदा सुनो, आज तुम्हारा लाडले को पकड़ के लाई हूं मैं। बोला अच्छा, ये लो, ये रहा तुम्हारा लाडला। तो क्या कर, देखती है तो प्रभावती खुद का लड़का उसके हाथ में, अरे। और पीछे से कृष्ण भगवान आ रहे, बोल रहे मैया क्या हो रहा है। तो यशोदा कहते अच्छा है तुम्हारा काम, अपने लाडले को पकड़ के मक्खन चोरी करते हुए आकर मेरे लाडले को बदनाम कर रही हो, अभी बच्चे को लेके आई, कल पति को लेके आओगी, ये देखो तुम्हारा लड़का चोरी कर रहा है। तो इतनी शर्मिंदा होती है वो प्रभावती। तो अगली बार सब लोग क्या करते हैं, सब गोपियां मिलकर कहते हैं कि अभी हम और कोई रुक्सा बनाते हैं उसका। तो वो मटका टांगते हैं, नीचे टांगते हैं, ऊपर टांगते नहीं, और सबको घंटी लगा देते हैं उसको, और घंटी से कहते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम में सब चेतन है, घंटी भी बोलती है और घास भी बोलता है और पेड़ भी बोलता है और जानवर भी बोलते हैं, वहाँ पर सब चेतन है, सब चिंतामणि भूमि है, और सब जीव जो है भगवान से वार्तालाप करते हैं। तो घंटी से बोलती है, देखो जब जैसे वो आएगा ना, तुम जोर से बजना, हम छुपे रहेंगे, आपकी आवाज़ आते हैं, हम भाग के आएंगे, उनको पकड़ेंगे। सब जगह दरवाजे सब बंद करके रखे हैं, अंधेरा करके रखा है, और सब चारों ओर से गोपियाँ छुपी हुई झाड़ के अंदर जाके, और जैसे घंटी बजेगी उनको भाग के आने का प्लानिंग है, और सबको पकड़ने का प्लान है कि तुम इसको पकड़ना, तुम उसको पकड़ना, कृष्ण को, बलराम को, सुदामा को, मधुमंगल को, उस अर्जुन को, रक्तक को, सबको बना के रखा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुमको किसको पकड़ना है उनको मालूम होना चाहिए, उसी को पकड़ना है आपको जाके। तो ये आते हैं सब लोग, बोले अरे आज तो बहुत अच्छा वातावरण है, हाँ एकदम नीचे सब लगा के रखा है, कुछ ज़्यादा कष्ट भी नहीं है, एकदम रीच में है, लेकिन गड़बड़ है आज, घंटी लगा के रखा है, कोई षड्यंत्र है इसके अंदर। तो घंटी से बोलते हैं क्या तुम क्यों लटके हो यहाँ पर, तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा यार प्लानिंग है। तो वो कहते हैं घंटी देखो तुम तो मेरी सेविका हो। हाँ हाँ स्वामी आप, मैं आपकी सेविका हूँ। तो आज मेरा तुम्हारे लिए आदेश ये है कि जब मैं माखन खाऊंगा तुमको बजना नहीं है, ठीक है आपकी इच्छा नहीं बजेंगे। तो बड़े इत्मीनान से और आश्वस्त होकर हाथ डालते हैं, नहीं घंटी बजती है, निकालते हैं नहीं बजती है, जब मुंह में डालते हैं जोरदार घंटी बजती है, भाग के सब गोपियां आके झपट लेती है, सबको पकड़ लेती है, कहते हैं कि अभी तुमको आज सबको, ना केवल कृष्ण को, सबको पकड़ के ले जाएंगे मैया के पास और प्रूफ दे देंगे आज क्या है। तो सब गोपियां हैं यहाँ, हजारों गोपियां जमा हो गई, सब देख रहे हैं, अरे बढ़िया, रोज आके शरारत करता है, तंग करता है, हमको परेशान कर देता है, आज हम सब जाकर इतने दाने खा चुके हैं आज तक नंद भवन में कंप्लेन करते हुए, आज जाकर हम दिखाएंगे। तो कृष्ण को प्रभावती पकड़ी हुई है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बोले ये सबसे बड़ा चोरों चोरों का शिरोमणि है, चोर अग्रगण्य शिरोमणि, इसको पकड़ना है। तो वो गोपियों को कह रहे देखो मैं आपको कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो आप। फिर रोने लगते हैं, माफ़ कर दो मुझे आप, क्योंकि इतना बड़ा वातावरण है ना, अकेले नहीं है वो, बहुत सारे गोप को पकड़ा हुआ है, बहुत सारी गोपियाँ हैं, सब लोग एकदम उल्लास बना रहे हैं, अभी पकड़ के ले जाएंगे, इतना बड़ा गांव जमा हो रहा है, दोनों तरफ से लोग खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। और कुछ गोप भी खड़े हैं उसके अंदर, क्यों पता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये दोनों कृष्ण बलराम माखन चोरी करते हैं, खा के भाग जाते हैं, और जो मोटे मोटे ग्वाल बाल हैं वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनको इतना जोर से भागने को नहीं होता है, तो भी तालियां पीट रहे हैं, अच्छा है रोज तुम चोरी करते हो हम पकड़े जाते हैं, अच्छा हो गया आज तुम पकड़े गए, वो भी तालियां पीट रहे हैं। तो क्या सीन है देखो ना, सब लड़कियां हंस रही हैं, बड़ी लड़कियां बड़ी माताएं हंस रही है, और सखा लोग भी हंस रहे हैं, और कुछ सखा पकड़े हुए हैं वो परेशान है, कैसा बड़ा सीन बना हुआ है। तो वो कहते हैं देखो देखो ताई जी ऐसा है कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है इतनी जनता में, आपने पकड़ा है आप ले जा रहे हैं मैया के पास, कोई बात नहीं ले जाओ, आज आप जो करना है करो, या तो मुझे छोड़ दो, और अगर ले जाना है तो मुझे ना बहुत शर्मिंदा शर्म लग रही है, ज़रा आपकी चुनरी से मुझे ढक दो आप ज़रा, क्योंकि मुझे कोई देखे नहीं। चलो तो कोई बात नहीं, ठीक है चुनरी से ढक देते हैं उसको, फिर आप समझ सकते हैं ना अभी पूरा ढके हुए है भगवान, हाथ उसके हाथ में है, ले जा रहे हैं उसको। तो उतने में कहते हैं इतना कसके पकड़ा है, देखो मेरी कलाई जो है ना कमल की तरह है, कोमल है एकदम, तुम इतने बड़े बड़े हाथों से इसको पकड़ के रखा है, मेरे दर्द हो रहा है बहुत, यहाँ पर दर्द हो रहा है, आगे भी दर्द हो रहा है, थोड़ा हाथ बदली करेंगे तो चलेगा ना, मतलब दूसरी कलाई पकड़ो तो कोई बात नहीं। और ये करने के पहले उसी के बालक को वो बुलाते हैं, वो साथ साथ चलाते हैं, और फिर बोलते हैं कलाई बदली करो, जैसे ही वो तो पूरा जोश में है जाने के, और जैसे ही हाथ बदली करने का समय आता है, बड़ी कुशलता से उसके ही बालक का हाथ उसके हाथ में देते हैं, और पीछे से खिसक जाते हैं, भाग के घर चले जाते हैं, बोले मैया भूख लग रही है बहुत, कुछ खिलाओ। मैया माखन खिलाती है, बड़े प्रेम से दुलारती है, चुम्मा लेती है, और फिर बहुत नींद आ रही है सुला देती है। और कुछ देर बाद पूरा जुलूस आता है घर पे, शोर मच रहा है, बोले क्या हो रहा है, हाँ इतने बहुत सारे गोपियाँ, हजारों गोपियाँ, और सब ग्वाल बाल चिल्ला रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई जिसको पकड़ा हुआ है रो रहे हैं, जिसको नहीं पकड़ा है वो हंस रहे हैं, सब गोपियां भी बड़े जोश में हैं कि आज हम सबको रंगे हाथ पकड़ाएंगे। तो प्रभाव दिया के बस ये लो कन्हा को तुम्हारे, और दुपट्टा जब उठा दिए तो फिर वही लड़का है। क्या है क्या, हर बार तुम्हें मैं कहती हूँ तुम हमेशा ऐसे करती हो, मेरे बालक को बदनाम करने का पड़ा, तो ये सब हो रहा है। तो बाद में बेडरूम से आते हैं कन्हैया जी, मैया क्या शोर मच रहा है, कौन आकर शोर, मुझे नींद आ रही थी और इन्होंने नींद मेरी तोड़ दी। वो अंदर आया, कब से घर पे आ चुका है, कितनी देर हो गई, माखन खा के लोरी सुन के सो भी गया था वो, और तुम अभी आके चुस्ती से कह रहे हो कि तुमको लाला को पकड़ के लाई हूँ। तो फिर पीछे से ठेंगा दिखा रहे उसको, मैंने कहा था ना आपको मुझे छोड़ दो, तो नहीं माना, हाँ बहुत परेशान हो जाओगे तुम। एक बार ऐसे ही होता है कि वो माखन में हाथ, मुंह में माखन, सब जगह माखन है, पकड़ते। तो वो कहते हैं ऐसा है ना कि जब मैं तुम्हारे घर पे आया, वो गोपियों को समझा रहे हैं जिस गोपी ने पकड़ा है, तो तुम्हारे घर पे आया मैं, मैंने बहुत चीठी की लाइन देखी, लंबी लंबी लाइन। तो मुझे लगा कि ये चिट्ठियाँ ज़रूर मक्खन की ओर जाती होंगी, तो मैं माखन के मटके की ओर गया और मैंने माखन के मटके की ओर भी चिट्ठियों को देखा। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि माखन के अंदर भी चिट्ठियाँ हैं। तब मैं उसको तुम्हारे कीमती माखन को बचाने के लिए हाथ डालकर एक एक चिट्ठी को बाहर निकाल रहा था। तब कुछ चिट्ठियाँ जो है मेरे शरीर पर चल के आई और शरीर से मेरे चेहरे पर चल के आई, तो मुझे गुदगुदी होने लगी। तो फिर मैंने उसी जो जिस हाथ से मैं वो मक्खन निकाल रहा था, चिट्ठियों को निकाल रहा था, उसी हाथ से गुदगुदी से मैंने वो चिट्ठियों को निकालने का प्रयास किया, तो कुछ मुंह पे लग गया मेरा, तो मैंने थोड़ा चाट लिया उसको। इतना अभी होंठों के पास में आ गया मक्खन, तो मैंने थोड़ा सा चाट लिया मैंने, लेकिन सच मान लो ये चिट्ठियाँ जो थी है उसको बचाने के लिए मैंने सब किया था। इस प्रकार से भगवान जो है वो बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं ब्रज में। और एक आखिरी लीला आपको सुनाते हैं, वो ये है कि ऐसे ही जो एक बार उनको सबको पकड़ लिया उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी कहानी, अलग अलग, मतलब एक सेम लगती है कहानी लेकिन अलग अलग था उसके अंदर है। तो एक बार ऐसे पकड़ लेते हैं, एक सारा कमरे के सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, एक ही दरवाजा खुला रखते हैं और सब ग्वाल बालकों माखन खाते हुए पकड़ लेते हैं। लेकिन ये इतने उस्ताद है ना सब लोग, वो तुरंत हाथ को छुड़ा कर जो है देखते हैं खिड़की ऊपर खुली है, सब खिड़की से भाग जाते हैं, एक एक पे चढ़ के ऐसे दीवार में, ऐसे बंदर चढ़ते ना, ऐसे भाग जाते हैं खिड़की से बाहर जाते हैं सब बाहर के। और सब लोग जो अंदर है उनको बुला रहे हैं, जो बाहर गए हुए हैं वो जोरों से पुकार रहे हैं, रक्तक भागो, अर्जुन भागो, भाग रहे सब लोग वन आफ्टर अनदर। आखिर में सब लोग निकल जाते हैं खिड़की से, गोपियों का ये प्लान भी फेल हो जाता है। लेकिन जो जो चढ़ रहे हैं ऊपर खिड़की के और उसके पैर नीचे खींच रहे हैं और ये ऊपर से खींच रहे हैं सब लोग उनको, तो सबको वो ऊपर वाले जो है वो खींच खींच के निकाल लेते हैं। लेकिन एक जो है ग्वाल बाल वो खिड़की में अटकता है क्योंकि उसका पेट खिड़की से बड़ा रहता है। सांदीपनी का पुत्र मधुमंगल अब ये नीचे खींच रहे हैं, ऊपर से खींच रहे हैं और वो पुकार रहा है कृष्णा बलराम बचाओ, बोले मधु आजा जल्दी आजा, तो खींच रहे हैं उसको, लेकिन उसका पेट खिड़की में अटका हुआ है। तो उसको जोर से खींचते हैं तो नीचे अकेला गिर जाता है और जोर से पुकार रहा है कृष्ण बलराम बचाओ बचाओ, मुझे गोपियों ने घेर लिया है। और जैसे ही गोपियाँ उनको पकड़ती हैं, उनको डंडे से मुक्के से मारती हैं और कुछ गलत बोलती है, कुछ कठोर वचन भी बोलती हैं और बुरे बुरे शब्द भी बोल देती हैं और परेशान करती है ब्राह्मण के बालक को। और जोरों से कृष्ण बलराम कन्हैया श्याम सुंदर बचाओ, श्याम सुंदर की आवाज़ जो है मधु मधु जल्दी आ जाओ, तो दूर दूर जाती है आवाज़ जो है ना, जब पास में है तो जोर से आती है लेकिन आवाज़ भी क्षीण होती जाती है। लेकिन कृष्ण को लगता है अरे चारा मेरा मधुमंगल फंस गया, हम लोग सब लोग निकल गए, तो ये दोबारा लौट के आते हैं। अरे गोपियों पता नहीं है सांदीपनी का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, देखो जनुई कितना चमक रहा है शरीर पे उसके, अगर जनुई को हाथ लगाएगा तोड़ेगा वो शाप देगा तो तुम सब नरक में जाओगी, डरना सीखो इससे। तो एकदम गोपियाँ भोली वाली बेचारी, इनके षड्यंत्र युक्त वचनों से बहुत परेशान हो जाती है, अरे क्या करें अभी क्या करें, उनको प्रसन्न करो, उसको दक्षिणा दो, उसको पूछो क्या करें उसके लिए। तो सब गोपियाँ एकदम पछताती, अरे हमने गलत काम किया। तो सब उनके चरणों में गिर जाती है, मधुमंगल अभी पीट रही थी अभी चरणों में गिर रही, वाह क्या बात है, सब कन्हैया की कमाल है। हर समय उनको बचा हमको बचाते हैं, तो क्या करें आपके लिए बताइए ब्राह्मण देवता क्या करें। तो वो कहते हैं लड्डू बनवाओ, मिठाई बनवाओ, लस्सी लाओ, मक्खन लाओ। सब अपने घर जाती है, अपने अपने हाथों से मंथन किया हुआ मक्खन लड्डू मनोहर लड्डू सब लेके आते हैं और उनको आसन पे बिठाते हैं, सिंहासन पे उनकी आरती करते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, वाद्य बजाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अत्तर लगाते हैं, इत्र लगाते हैं और कहते हैं कि अभी दक्षिणा देना है। सब दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण कहते तथास्तु, निकल जाते हैं। ये लीला जो है वो उधर गहवरकुंड में हुई थी, हम लोग जाते हैं ना वहाँ पर चिकसोली गांव में, वहाँ पर सिंहासन भी बड़ा हुआ है, वे भी यहाँ पर मधुमंगल को बिठाया गया था, उनकी सेवा की गई थी, आप लोग गए उधर। तो इस तरह से ये भगवान की जो बाल लीला है बड़ी मनमोहक है, केवल सुनने मात्र से हृदय की शुद्धि हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, पाप प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है और भगवान के आकर्षण को बढ़ाता है, रति को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। इसलिए नित्य नियम से ठाकुर जी की लीलाओं को सुनना चाहिए। ये नाम रूप लीला और धाम, भगवान का नाम और भगवान, भगवान का लीला और भगवान अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। जैसे भगवान है वही भगवान की लीला है, वही लाभ मिलता है भगवान से मिलने से और भगवान की लीलाओं को सुनने से। अभी हम भगवान को मिलने के लिए तो योग्य नहीं है, उतनी हमारी योग्यता नहीं कि उनका दर्शन हमको हो जाए, लेकिन भगवान की कथा सुनकर उनका अनुभव कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का, उनका रोम रोम से उनको अनुभव कर सकते हैं जब भगवान के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो यही हमारे जीवन का भाग्य है कि हमारी योग्यता ना होते हुए भी भगवान ने अपनी लीला को प्रस्तुत करके रखा है। लीला तो होके 5,000 साल हो गए, कैन आई हैव सम फाइल प्लीज, लीला होके 5,000 साल हो गए लेकिन हमने अभी तक उसको हमको प्रस्तुत करके रखा है, अपने धाम को छोड़ के गए हो। धाम को प्रकट किया, 84 कोस गोलोक वृंदावन का हिस्सा यहाँ प्रकट किया भूमि पर और छोड़ के गए हमारे लिए, जिसको हम मिल सकते हैं अभी जाके, भेंट दे सकते हैं ना, आप लोग गए थे अभी यात्रा में। तो भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान के धाम में जाना मतलब भगवान से मिलना है, उस चेतना का अनुभव कर सकते हैं आप कि भगवान का धाम में जाने का हृदय पर क्या असर होता है, वहाँ बैठकर वहाँ पर की गई लीलाओं को सुनने से क्या असर होता है, जो जीवन का परम आनंद है उसका अनुभव वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं पर कर सकते हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर भी उनकी याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनको लीलाओं को बोल रहे हैं, तो हम वहीं हैं अभी। सब लोग हम लोग अंधेरे में नहीं हैं, जब भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं तो हम सब लोग वृंदावन धाम में हैं, भगवान के साथ हैं, भगवान हृदय में दिमाग में छा गए हमारे अभी कुछ देर के लिए क्यों ना हो। तो इसी स्थिति को बनाए रखना हमारे जीवन का उद्देश्य है, उठते बैठते खेलते खाते पीते काम करते हुए क्या करते थे गोपियाँ, दिन भर जब मंथन कर रहे हैं तो कल जो लीला हुई है उसके गीत बनाकर आज गा रही हैं, जो कल भी बकासुर को मारा तो उसका गीत बनाकर आज गा रहे हैं और मंथन किया जा रहा है, उसके गुणगान किए जा रहे हैं, उसके लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। जब गैया चरण जा रहे हैं तो उनके पास सोच रहे हैं कि अरे कहाँ चलते होंगे, कहाँ गए होंगे, जब याद आती है तो तुरंत ऊपर चढ़ के खिड़की से देखते हैं कि कहाँ गए हैं, नज़र दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सूरज ढलने का समय आता है, वापस आने का समय आता है, तो बार बार देख रहे हैं कहीं दूर से तो आ तो न रही है, सूरज अभी तक ऊपर क्यों हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको बेताबी से इंतज़ार है कभी सूर्यास्त होगा तब ये लौट के आएंगे। तो जब सूर्यास्त होता है तो उनको रहा नहीं जाता है, तो अपना महल छोड़कर नीचे उतर आते हैं, नीचे एक जगह बना के रखी है नंद बैठक नाम की, वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको उतनी क्या कहते हैं उसको, उतना पेशेंस नहीं है कि वो पहाड़ पर पूरा चढ़कर महल तक आ जाए तब तक हम लोग वेट करते रहें, नहीं जब नंद भवन के सीमा पे आ गए हैं तो नीचे उतर के वहीं पर उनका स्वागत कर लेते हैं, वहीं पर गले लगाते हैं, नंद बाबा कृष्ण बलराम को उठाते हैं, गले लगाते हैं, चूमते हैं, अपने दोनों जंघा पर बिठाते हैं, और दोनों कैसे एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ एक हाथ एक वहाँ, दोनों के हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं एक दूसरे, सुंदर तरीके से बैठकर गले लगाते हैं उनको। तो ये ब्रज की चेतना क्या है, दिन रात हर क्षण केवल कृष्ण भावना है, कैसे कृष्ण को रिझाया जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए, कैसे उसको प्रसन्न किया जाए, यही चेतना अगर हम अपनाते हैं तो हम भी ब्रज में हैं। आखिर ब्रज, ब्रज भूमि मतलब क्या है, जहाँ पर प्रेम से भगवान की सेवा की जाती है, जहाँ पर प्रेम से भगवान की भावना में लोग रहते हैं अनंत हर क्षण, वही ब्रज भूमि है। अगर ये आपके घर में हो रहा है तो आपका घर भी ब्रज है, अगर आपके गांव में हो रहा है तो आपका गांव ब्रज है, अगर आपके देश में हो रहा है तो आपका देश ब्रज है, आपके परिवार में हो रहा है आपका परिवार ब्रज है, ये उसका फॉर्मूला है। वहाँ जाते क्यों हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ जाकर वहाँ का भाव समझने का प्रयास करके अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं उसको, और यहाँ पर आकर उस भाव को परवरिश करने की कल्टिवेट करना चाहते हैं, ताकि हमारा हर धड़कन हर सांस जो है श्री ब्रजभूमि की चेतना बने। और ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर कोई विकारों का आपको कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, किसी मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तो कृष्ण भावना, कृष्ण लीला का स्मरण करो, कृष्ण लीला को पढ़ो, कृष्ण नाम को जप लो, जप करो, भक्तों के संग में आकर कृष्ण की कथा सुनो, तो सारे विकारों से हम मुक्त हो सकते हैं, जड़ से निकाल देगा सब विकारों को, ऐसी शक्ति है कृष्ण लीला में। और हरि कथा सुनने से कितना भी पतित जीव है, जो जितना पाप नहीं कर सकता है जो आगे करने वाला है और उतना आगे भी कर सकता है, उतने सारे पाप जो है हरि कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं, हरि नाम जप करने से नष्ट हो जाते हैं। जितना पाप करना हम सोच नहीं सकते हैं, उतने सारे पाप भगवान का नाम जप करने से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान एक दिव्य वस्तु है, दिव्य व्यक्ति है, परम दिव्य, परम पुरुष व्यक्ति है, जिनके केवल स्मरण मात्र से ही भय भाग जाता है, विकार भाग जाते हैं, पाप भाग जाता है और केवल पवित्रता और प्रेम का उदय होता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है, आपके लिए दिस इज द गिफ्ट फॉर यू फॉर योर बर्थडे। हरे कृष्णा।